भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि मंगलवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर असामान्य स्थिति को स्वीकार किया।
In 2020, the Chinese, in violation of multiple agreements, brought large number of forces to our border, and they did it at a time when we were under COVID lockdown in this country. Presumably, that may have had some bearing on somebody's calculation. Now, we responded by counter-deploying our forces, and then all of you are familiar with the story. We had the clash in Galwan, and for 4 years now, we are both deployed ahead of our normal base positions, normal patrolling zones out there. So it's a very abnormal deployment today along the line of actual control.
सीमा पर तनाव के बावजूद भारतीय कारोबार जगत चीन से ज्यादा खरीद कर रहा है। चीन और भारत के बीच बढ़ते कारोबारी रिश्तों पर जयशंकर कहते हैं,
there is today a big economic security debate underway in the world, not just in India. It's happening in Europe, it's happening in the United States. That countries feel today that many core businesses must stay within the country.
और अब चर्चा देश में जारी आम चुनाव की। लोकसभा की आधा से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। कुल 7 में से 4 चरण में 380 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह का दावा है कि भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि भाजपा की उम्मीद हर चरण के साथ टूटती जा रही है।
चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है।
पांचवें चरण के तहत अब 20 मई को 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें दांव पर होंगी। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की सीटें भी हैं। इन क्षेत्रों में जोरदार प्रचार का काम चल रहा है। मंगलवार को झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा की। उन्होंने मजबूत सरकार की वकालत करते हुए कहा,
साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती।
नरेंद्र मोदी ने इस सभा को संबोधित करते हुए नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी दी।
आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है।
इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के अलावा कांग्रेस पार्टी युवा बेरोजगारों को रिझाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को झांसी में राहुल गांधी ने युवाओं से वादा करते हुए कहा,
हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में ये अधिकार मिलेगा। जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए महीने के ठगाठग 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 8,500 रुपए।
विपक्षी दल भाजपा से संविधान और आरक्षण को खतरा बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को घेरा।
कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कुछ नहीं करते मोदी जी। आज लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बोल के बैठ नहीं सकते थे। आप जो बैठे हमारे वजह से, क्योंकि हमने संविधान बनाया, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र के नाम पे हमने इस देश को कायम रखा।
बहरहाल चुनावी गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राज्य में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद देर शाम वे मुंबई में एक रोड शो करेंगे। इसके चलते शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।